हम सबका मन मलिन है, हम माने या ना माने ये वास्तविकता है। यदि ऐसा ना हो तो हमारे भीतर में बुरे विचार क्यों उठते हैं? राग द्वेष अहंकार आदि ऐसे बुरे विचार क्यों आते हैं? हम अपने से छोटों पर घृणा करते हैं, अपने से बड़ों पर ईर्ष्या करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा चित्त निर्मल होता नहीं, स्थिर होता नहीं। हम कहते हैं सत्संग में जाते हुए 20 साल हो गए, अभी तक हमें कुछ दिखता नहीं कि क्या हमने किया है। ऐसे भाई लोग हैं जो बहुत ही परेशान हैं। परेशानी भी एक गुण है, परंतु सत्यता ये है, महापुरुष कहते हैं कि संतों महात्माओं की सेवा में बैठकर उनके उपदेश को श्रवण करें, ध्यान से श्रवण करें। श्रवण मनन निध्यासन और वैसा बनना, ये क्रम हम करते नहीं। यहाँ सत्संग में आए, 4 शब्द सुने, सीढ़ियां उतरते वो भूल जाते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति मनन नहीं करता है, और मैं नहीं जानता कि कोई व्यक्ति निध्यासन करता है और कोई ऐसा वैसा बन जाता है। ये हमें बहुत कमी है, बड़ी चंचलता है हमारे इधर। ईश्वर की कृपा है कि यहाँ 15-20 मिनट या आधा घंटा बैठ जाते हैं, परंतु ये काफी नहीं है। कुछ गुरु महाराज के पवित्र वचनों को गंभीरता से सुनिए, और घर जाके 10 मिनट 15 मिनट लगाइए, याद करिए, मनन करिए क्या गुरु महाराज ने क्या फरमाया था। जब तक मनन नहीं करेंगे निध्यासन नहीं बन पाएगा और आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा। जितना मर्जी शास्त्र पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, कुछ नहीं होगा। मनन आवश्यक है, अति आवश्यक है। मनन के बाद फिर आता है प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन। जैसा सुना था मनन करके देख लिया, ये चीज ये वस्तु ये विचार हमारे हित करेंगे, वैसा बनने की उसकी पवित्र वाणी से जो हम सुनेंगे उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। आप किताबें पढ़ते हैं, इतना प्रभाव नहीं पड़ता। वही बातें हैं किताबों में लिखी हैं और वही बातें महापुरुष बताते हैं। तो महापुरुष के बताने में ये अंतर है, वो उसका जीवन बोलता है। यदि वो प्रवचन देता है और उसका जीवन प्रवचन के अनुसार नहीं है तो उस प्रवचन का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। उन वचनों को बोलने वाला जो व्यक्ति है उसका जीवन, उसके जीवन का प्रभाव हम पर पड़ता है। जो सच्चा संत होगा वो जो बोलेगा वो सत्य बोलेगा। क्यों? उसकी जबान से भी सत्यता निकलती है, उसके शरीर के रोम रोम में से आत्मा की रेशमें निकलती हैं। इसलिए ग्रंथों में संत की महिमा बड़ी गाई गई है। संत को परमात्मा जैसा ही माना गया। संत के हृदय से आत्मा की रेशमें निकलती हैं। वास्तव में वही प्रसादी, उस प्रसादी के हम भिखारी हैं। और उस महापुरुष से जो शुभ वचन सुनेंगे वो हमारे हृदय में जल्दी प्रभावित तो हो जाएंगे, अंकित हो जाएंगे। और यदि हमने कुछ मिनट और मेहनत की, परिश्रम किया, मनन किया, तो जो कुछ सुना था वो भीतर में चित पर अंकित हो जाएगा। मन करने के बाद उसको व्यवहार में हम लाए वो और सुंदरता फैलाएगा और उस सुंदरता को और आगे लेकर गए। तो तू करता तू भया मुझ में रही न हो, हम जैसा प्रभु है वैसे हम बन जाए। तू तो करता तू भया मन में रही न हो, आपका फिर का मिट गया। हमारे और ईश्वर के बीच में जो दीवार थी अहंकार की वो टूट गई, एक जैसे हम हो गए। जो जल में जलाए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत सुभा, तब ये ज्योति ये आत्मा परम ज्योति में मिल जाते। मिट गया गमन फिर आवागमन खत्म हो जाते, पाए विश्राम अब आत्मा परमपिता परमात्मा के चरण रज बन गई। नानक प्रभु के सत्कृपा ये शब्द पुनः पढ़ते हैं सुनेंगे और अगले सप्ताह इस पर फिर कुछ कहेंगे। इस बीच में हो सके तो इन शब्दों को आप बार बार पढ़िए ताकि अगले सप्ताह जब आए तो चित्त को अधिक धोकर आए, मन को अधिक धोकर आए, इन शब्दों के महत्व हमें पूरी तरह से समझ आ जाए। महापुरुषों का एक एक अक्षर जो है वो सागर रूप है। हम नावल की तरह ऐसी पुस्तकें पढ़ जाते हैं, ये गलत है। एक लाइन पढ़ें, दो लाइन पढ़ें, दो बार चार बार दस बार जब तक वो समझ ना आए उसका मनन करते जाइए, मनन करते जाइए। तत्पश्चात उन उस वाणी के पवित्र भाव को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारें, व्यवहार में उतारें, फिर धीरे धीरे उन शब्दों के अनुसार आपका रूप भी बदल जाए और वो जैसे शब्द कहते हैं वैसा बन जाए। तब आप सागर के नजदीक पहुंच गए, कोई देर नहीं लगेगी, सागर अपने आप आपको खींच लेगा, अपने जैसा बना ले। वो बड़ा कृपा निधि है, दया निधि है, वो तो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आप आएंगे उसकी गोद में। आपको भले प्रसन्नता ना हो परंतु प्रभु को बड़ी प्रसन्नता होती है, जैसे एक पिता की संतान पढ़ लिख के खूब अच्छी हो जाती है तो पिता संतान को देखकर बड़ा है, बड़ा प्रसन्न। बच्चा पिता को देखकर भले ही आनंदित न हो परंतु पिता अपने पुरुषार्थ की सफलता को देखकर वो बहुत आनंदित होता है, बहुत आनंदित होता है। इसी तरह परमात्मा है, वही हमारा सच्चा पिता है। उसको जितनी खुशी मिलती है हमको अपनी चरण रज बना के हम अनुभव ही नहीं कर सकते। भिन्न गुण कीते भक्त न हो, भक्ति का यह अर्थ है साधना। साधना की सफलता तब तक नहीं होगी जब तक ईश्वरी गुणों को अपनाएंगे नहीं। ये बड़ा समय लगता है, घबराना नहीं चाहिए। एक एक गुण में निपुणता प्राप्त करने में एक जीवन लग जाता है, अधिक समय भी लग जाता है। संक्षेप में जैसा परमपिता परमात्मा है वैसा ही हमें बनना है, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, इससे कम नहीं है। तू करता तू भया तू बनना है। कल क्रिसमस डे है, हजरत ईसा का दिन मनाते हैं। जैसे अभी निवेदन कर रहा था, महापुरुषों के जीवन का ध्यान करना चाहिए। उनका दिन मनाने का मतलब ये है, सरकारी छुट्टी हो गई और हमने भी घर में छुट्टी लेकर समय व्यर्थ किया, कुछ ईश्वर भजन नहीं किया, तो वो दिन मनाना नहीं है। हजरत ईसा के गुणों को याद करना है, मैं बार बार कहा करता हूं उनके विशेष गुण थे फॉरगिवनेस क्षमा। फांसी पर चढ़े हुए हैं और जलाद रो रहा है नीचे, तो भगवान कहते हैं क्यों रो रहा भाई, मैं परलोक में पीछे पहुंचूंगा तू पहले पहुंच जाएगा, तू अपना कार्य कर। फरीद कहता है ना बुरे का भला कर। ये हजरत ईसा का भी संदेश हमारे लिए अपने वाले के लिए, तनिक भी बुराई अपने मन में नहीं रखते, उसको परलोक में ले जाते हैं, आप बाद में जाते हैं उसको पहले भिजवा देते हैं, फांसी चढ़ाने वाले को पहले भिजवा देते हैं। ये उनका विशेष गुण था फॉरगिवनेस, क्षमा तो कर दिया किंतु उसके साथ प्रेम करो घृणा नहीं करो, ये समझो मैंने इसको क्षमा कर दिया है, ये मेरे से हीन है इसलिए मैंने क्षमा कर दिया, और अपनी शक्ति को सराहें अभिमान करें अहंकार करें ये क्षमा करना नहीं है। हजरत ईसा कहते हैं प्रेम करो, क्षमा करो फिर प्रेम करो, यहां तक नहीं उसकी सेवा करो, तन मन धन से जैसा भी हो सके उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करो। दो औरतें उनके पास आई अंधी थी, भगवान तो देखते थे मगर उनको नहीं पता था कि भगवान देख रहे हैं, पूछते पूछते वो उनके चरणों में आ, हजरत ईसा का प्रभु के प्रति बड़ा विश्वास था और हजरत ईसा से लाभ उन लोगों ने उठाया जिनके हृदय में हजरत ईसा के प्रति विश्वास था, परमपिता परमात्मा के प्रति विश्वास था। वो औरतें अति विश्वास के साथ आई, वैसे तो उनकी सेवा में हजारों व्यक्ति गए लाखों व्यक्ति गए, आप नहीं कह सकते कि जितने आदमी गए थे सबका ही भला हुआ, जैसे वो लोग चाहते थे वैसा हो गया ऐसा नहीं। दो दिन हुए मैंने एक जर्नल पढ़ा उसमें ये लिखा था, दो चार लाइनें इस विषय में थी, तो मेरी आपसे कुछ शब्द पढ़ के मुझे भी प्रेरणा मिली कि मैं आपसे अनुरोध करूं कि ईश्वर के प्रति गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास दिन ब दिन बढ़ाते जाएं, ये भी साधना। वो कहते हैं अंधविश्वासी होनी चाहिए सत्यता, अंधविश्वासी और सरलता, और मुझे उस दिन से ये नहीं परसों से मेरे मन में शंका रहती थी, तो मैं अब सोचता हूँ कि मैं गलत था, ये जो शब्द उस किताब में लिखे हैं उसे। आप मंदिरों में जाते हैं जो श्रद्धा और विश्वास से जाते हैं, मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद या जो भी स्थान ईश्वर का, यदि आप श्रद्धा और विश्वास से जाते हैं तो भगवान मूर्ति की पूजा के रूप में वहां विराजमान है, उस मूर्ति से भी लाभ होता है। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता है जो अपने आप को विवेकी समझता है वो तर्क करता है उसको लाभ नहीं होता। ये बात मुझे दो दिन हुई कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रभु सब जगह है, ये क्या है मूर्ति है पत्थर की है, तो क्या हो। गुरुद्वारे में है पुस्तक रखी है तो क्या हो, क्या वहां परमात्मा नहीं है। गिरजे में क्या हो गया अगर से बस ईसा की मूर्ति है क्या हो गया। विश्वास और श्रद्धा ईश्वर से व्यापक है, आप मूर्ति को लेकर पूजा करते हैं तो ईश्वर आपकी आवाज सुनते हैं, आवश्यकता ये है कि हम श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाएं। एक तरह हम कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, तो क्या ईश्वर मंदिर में सर्वव्यापक नहीं है? ईश्वर गुरुद्वारे में नहीं है? ईश्वर मस्जिद में नहीं है? गिरजे में नहीं? हमारी आवास में कमजोरी, हमारे बिरे में कमजोरी है, हमारी प्रार्थना में कमजोरी है। वो तो सब जगह है, कमरे बंद कर लीजिए तब भी वहाँ वो आपको उसके दर्शन वहाँ होंगे। और जिनमें दृढ़ विश्वास है उनको वहाँ दर्शन होते हैं। तो उन दो औरतों को उन्हें बुलाया कि चलो कमरे में। उनको नजर नहीं आ रहा हजरत ईसा, परंतु उनमें श्रद्धा और विश्वास है कि वो उनकी सेवा में आए। उनसे पूछा है, हजरत आप कैसे यहां पहुंचे? वो सरलता से कहते हमें नहीं मालूम, आप ही खींच लाए हैं। दोनों की आंखों में प्रेम के चक्षु बह रहे और हजरत कहते हैं सिस्टर्स बहने आंखें खोल। बहुत समय के बाद आंखें खोली नहीं, देर लगी खोलने, परंतु चक्षु सामान्य हुआ। और क्या स्थिति थी उन औरतों की, बहनों की? प्रेम अश्रुओं की नदी बह रही थी। उस पुस्तक में लिखा कि हजारों व्यक्ति हजरत ईसा की सेवा में गए, सबका उद्धार नहीं हुआ, उन्हीं का उद्धार हुआ जिनके हृदय में श्रद्धा और दृढ़ विश्वास था। इतनी आयु के बाद ये दो शब्दों की वास्तव मीनिंग मुझे परसों मिली। कभी भी खंडन नहीं करना चाहिए किसी बात का। व्यक्ति का मन देखो, मन के साधे सब सब। मन सध जाएगा तो ईश्वर तो समीप आ ही जाएगा किसी तरीके से। सब जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, मैं भी आर्य समाज स्कूल में पढ़ा हूं, मैं भी विश्वास नहीं करता था। उन्होंने उनमें से कितने आदमी हैं जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए? तो कभी भी भूल कर किसी की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। कोशिश हम सब की, चाहे हम आर्य समाजी हैं, चाहे सनातनी हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, ईश्वर बाप हमारा एक ही है, सबका एक है। और सबके हृदय में वो श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होनी चाहिए। परमात्मा नहीं देखता कि आपने कौन से कपड़े पहने हुए, सरदारों के पहने, मुसलमानों के पहने, कि हिंदुओं के पहने, ईसाइयों के पहने। ये जितने धर्म दिखते हैं ये सब मनुष्यों के। संतों ने विभाजन नहीं पैदा किया, किसी भी संत ने चाहे किसी धर्म का, ये मनुष्य ने किया, उनके बाद में किया। अपने भोजन को देखिए, अपने वातावरण को देखिए जिस वातावरण में आप रहते हैं, और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। इनमें शुद्धता या पवित्रता लाइए और ऐसा समाज, ऐसे समाज में प्रवेश करें, ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसे संतों की चरण रज लें कि आपके हृदय में कोमलता आ जाए। कोमलता, आप सड़क पर जा रहे हैं, किसी की टांग टूटी हुई है, वो रो रहा है, तीन दिन से रोटी नहीं खा रही, आपके हृदय में ये शब्द, ये भावना नहीं उत्पन्न हुई हो कि ये तो ठग है, ये पैसे इकट्ठे करके जाएगा घर जाके जुआ खेल। आपकी टांगे वहीं रुक जाए, पांव रुक जाए, वो भले ही बनावटी हो परंतु आपका हृदय बनावटी न बने। यदि गलती से किसी बनावटी व्यक्ति की भी आपने सेवा कर दी है तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। हृदय को बुद्धि को कोमल बनाए, अति कोमल, अति कोमल। एक बूटी आती है क्या नाम, जरा हाथ दो चार इंच पीछे रखो तो आपके हाथ से वो झुक जाते, उसके पत्ते झुक जाते हैं और आप हाथ उठा लेते हैं वो फिर नॉर्मल समान स्थिति में आ जाए। इसी तरह हम किसी का दुख देखें तो हमारे हृदय में सहज में ही कोमलता उत्पन्न हो जाए और उत्साह उत्पन्न हो जाए और उस व्यक्ति की दुख व्यक्ति का हम दुख दूर कर दें। प्रयास कर, करने वाला तो प्रभु है, हम कौन है? अपने भीतर में कोमलता उत्पन्न करो, कोमल, और ये सहज स्वभाव बन जाए। किसी की सेवा करके ढंडोरा मत पीटो कि मैंने ये काम किया वो काम। हमारी संस्कृति है गुप्त दान करना, अपने आप को गुप्त रखना, शोर नहीं मचाना। आपका स्वभाव बोले, आपके आपकी वाणी नहीं बोले, इसको सहज अवस्था कहते हैं। आप में सहजता आ जाए कि आपके हृदय से कोमलता, दूसरे के प्रति सद्भावना, बिना प्रयास के बह रही है, इस महान हस्ती का दिन मनाने का मतलब यही है कि उनके जीवनी के जितने गुण थे उनको ध्यान से सुने, मनन करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। गॉड इज लव, गॉड इज